भी फर्नीचर हर घर की पहचान बन चुकी है।
वो फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गार्लिक कीजी, सारे घर का फर्नीचर बढ़िया क्वालिटी से डिस्काउंटेड प्राइस से मिल जाता। सोडी फर्नीचर तो 3 साल ले नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन, 9058747171।
खूबसूरत दांत, बाएतमाद मुस्कुराहट और बाएतमाद गुफ्तगू, आपकी और आपके खानदान की मुस्कुराहटों की जमीन। फिलिंग्स, क्राउन्स, ब्रिजेस, क्लीनिंग, एक्सेप्टिंग न्यू पेशेंट्स, फ्री कंसल्टेशन, दांतों की संभाल के लिए डॉक्टर पद्मजा, 310 शेपर्ड एवेन्यू ईस्ट, 2997466। मुझे मजे दे चिकन टिक्के कबाब, बिरयानी, दाल तड़का,
लाहौरी स्टाइल नाश्ता, मजेदार कढ़ाई, मल्ट वॉटरिंग कबाब, सिजलिंग बारबेक्यू आइटम,
शाहीन टिक्का और कबाब,
इन फ्लेमिंगटन मॉल।
Valia Traffic Legal Services se Janab RS Valia.
Careless driving,
speeding ya phir accident,
fail to remain stopped at the scene,
red lights ya phir seat belts,
permit drive without insurance,
racing, student driving ya phir caught while using phone,
speeding,
RS Valia aapki ticket se nijat dilwayenge aur aapke points bhi save karenge. 9054542112 4542112।
ओपन माइक कैफे एंड कुजीन, जहां आपको मिलेंगे मजेदार खाने जैसे कि लाहौरी गोट कढ़ाही, शिनवारी गोट कढ़ाही, निहारी, हलीम, पाए, बिरयानी, सीख कबाब, चिकन टिक्का, शवरमा, पिज्जा, और मजेदार लाहौरी छोले, पालक पनीर और बहुत सी वेजिटेरियन ऑप्शंस। ओपन माइक कैफे एंड कुजीन, वही देसी अंदाज और वही देसी जायका। 1310 दंदा स्ट्रीट ईस्ट, मिसिसागा, यूनिट 3। ऑर्डर नाउ, कॉल 416-526-6800।
अकाल ट्रक एंड लूम, ताड़े ट्रक बादशाह दी क्वालिटी सर्विस, रिपेयर, ऑयल चेंज, वॉश ते मेंटेनेंस। एक और खुशखबरी, नॉर्थ अमेरिकन, चाइनीज ते कोरियन नवे ते इस्तेमाल शुदा टायर विद फुल वारंटी।
अकाल ट्रक एंड लूम, 1776 मेयरसाइड ड्राइव, 905-565-1100, 905-565-1100।
वेलकम बैक तमाम सामाइन जो हमें सुन रहे हैं 770 AM डायल पर प्रोग्राम साजो आवाज। मैं हूं आपका होस्ट आमिर अहमद और अब आपको थोड़ी ही देर में लेकर चलेंगे गर्मा गर्म खबरों की तरफ। और खबरों से पहले जो है वो कुछ स्पॉन्सर्स का पैगाम दे देते हैं जनाब। आज जैसे खाने पीने की तो हमने बात कर ली थी, वेस्ट एंड में जहां आप जा सकते हैं विलेज डेज, उसके अलावा अगर आप ईस्ट एंड में तो शाइन टिक्का इन कबाब पर जो है जरूर तशरीफ लेके जाइए। और वहां जावेद भाई से कहिएगा जनाब आप जो कढ़ाई खिलाते हैं जबरदस्त चिकन कढ़ाई और गोट कढ़ाई वो आपको खिलाएं, तो आपने अगर ईस्ट एंड पर हैं तो शाहीन टिक्का इन कबाब का जो है वो जरूर याद रखना है, आपने नाम ये भूलना नहीं है। इसके अलावा आपने अगर देखें कल वीकेंड है, वीकेंड पे आप निकल जाए, मैंने आपको बताया था ना लास्ट टाइम भी, सुबह 8 बजे, 8:30 बजे से लेकर रात 8 बजे तक जो है कैनेडन सब्जी फार्म जो है वो आपके लिए खुला होता है। तो आपने अगर ड्राइव भी करनी है और कुछ फूल पौधे आपने, फ्रूट वेजिटेबल्स प्लांट्स यानी फ्रूट प्लांट्स अगर आपने लेना है तो आपने जाना है कैलेडन सब्जी फार्म। यहां पर आपको एक बहुत ही जबरदस्त वैरायटी ऑफ प्लांट्स मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको जो है वो अगर आपने सॉइल चाहिए, पॉट्स चाहिए, गार्डनिंग टूल्स चाहिए, इसके अलावा तंदूर भी मिल जाता है यार यहाँ, वो जबरदस्त। मुझे लगता है कल शायद अगर वेदर मुझे इजाजत दे देगा तो मैं भी सुबह को 8-8:30 के करीब जो है वो एक लाल स्टोर से कॉफी लेके और बेकरी निकल जाऊंगा। अगर आप भी जाना चाहते हैं जनाब, पहुंचिए 12050 एयरपोर्ट रोड कैलेडन, और इनका नंबर है 9058409000 इनका नंबर है। चले जनाब, कुछ इनकी उबर लेट हो गई थी तो मैंने फौरन से एक्सपेडाइट कराया उस उबर को, और इस वक्त हमारे स्टूडियो में बरामद हो गई तो अभी थोड़ी देर में इनको करेंगे, बरामद हो चुकी हैं। तो आइए इनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू, कैसी हैं आप?
WSO यस, कल एक्सप्लेन किया था ना।
ओ चाहिए ओ वो वाला, ओ माय गॉड। अच्छा ये वो ओ माय,
ओ माय गॉड,
ओ माय गॉड। अच्छा कभी एक आज, अच्छा मेरे साथ एक बहुत जबरदस्त चीज हुई है।
अच्छा
अगर आरफा आपा सुन रही है
तुम्हें बचा हुआ
है, वो इस चीज को बेहतर समझ, नहीं आरफा आपा वो इस चीज को बेहतर जो है ना वो समझ जाएंगी और वो मुस्कुराएंगी।
अच्छा
शरद जी, आपकी लॉटरी निकली हो?
अच्छा
मतलब वो निकल गई है जिसने आपको दिए, मतलब उसको भी नहीं मालूम कि ये लॉटरी वो आपको दे रहा है।
अच्छा।
और आपकी लॉटरी समहाउ निकल चुकी है।
अच्छा।
वो लेके आपने लॉटरी रख दी है। अच्छा। पता नहीं टिकट।
हाँ।
और आपको थोड़ी देर के बाद पता चले।
हाँ।
कि भाई वो लॉटरी आपकी नहीं, वो किसी और की है।
हाँ।
कैसा आपको लगता है?
मुझे
जब पता चला
कि वो तुम्हारी नहीं, तुम्हारी बेगम,
मेरी तो लॉटरी निकल, मुझे पता ही नहीं कि मेरी लॉटरी निकल गई है।
वो तुम्हारी बेगम को पता है ना।
और मुझे जब पता चला
हाँ।
कि वो लॉटरी मेरी नहीं किसी
हाँ।
और की थी
हाँ।
तो मैं कहा अगर आप मुझे ये ना बता, मैं तो अभी भागने वाला था, मतलब हाँ। मैं नजर ही नहीं आता
हाँ,
वो लॉटरी लेके जो है घर निकल जाता।
exactly.
तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है लाइफ में
हाँ।
और जुम्मे के दिन ऐसा हो तो फिर ज्यादा हाँ। ही बंदे को होता है। मैं तो वीकेंड प्लान्स कर लिए थे, वो आप
अच्छा।
कहती ना कि यूरोप के जाने के टूर
हाँ, हाँ।
मैंने तो जब लॉटरी देखी मैंने कहा वो माय गॉड, मैं तो यूरोप निकल जाऊं
हाँ, क्योंकि 1775 से तुम गरीब यूरोप देख सकते हो ना, अब तुम अमीर यूरोप पे निकल जाते।
लेकिन
साउथ ऑफ फ्रांस।
फिर मुझे थोड़ी देर बाद अंदाजा हुआ, वो कहते हैं कि जब सो रहे होते हैं आप ख्वाब
हाँ।
देख रहे होते तो कोई चुटकी भरता है
हाँ।
तो आर पापा ने ऐसे चुटकी भरी हाँ। बेटा तू सो रहा है, उठ जा। वापस आ जा, तुझे यूरोप जाने की जरूरत नहीं।
ओ हो गया तुम्हारे साथ भी।
हाँ वो हो गया, वो आपका ओ माय गॉड। तो ये भी खुशियां हैं छोटी छोटी सी।
अच्छा अच्छा,
इंसान की जिंदगी
लेकिन
एक अच्छा
छोटी सी।
आज वो मैं ऐसे बना के इसको जोक कैसे बनाऊं, इस चीज पे थोड़ा सा कैसे इसको लाइटर मूड में लेके आऊं जो आज मेरे साथ हुआ है।
अच्छा अच्छा,
तो
नहीं तो असल में निकली हुई किसकी थी?
बस वो अननोन नाम की थी, वो ऐसे समझ ले।
अच्छा
तो किसी और की निकल आएगी।
अच्छा ओह माय गॉड,
अननोन नाम की। कभी कभी होता है ना अननोन नाम मालूम अफराद, जैसे कराची में मशहूर है, आपको मालूम मूवी बनी हुई इस पर।
अच्छा
नाम मालूम अफराद ने देखी? आप तो इतनी मूवीज, ओ माय गॉड, यहाँ आप हार गई। देखा आपने नाम मालूम अफराद नहीं देखी?
नहीं नहीं देखी मैंने। कौन था इसमें मैन?
बस अब आप ऐसा करिएगा, आपको दो दिन की मैं छुट्टी दूंगा अभी प्रोग्राम के बाद।
ओके जी।
तो आप नामालूम अफराद देखिएगा।
अच्छा
ये पाकिस्तानी मूवी।
कौन कौन है इसमें
यार? हीरोज ये है वो जो आपका भी, जो क्या वो गाने में हानिया आमिर के साथ था, क्या नाम है उसका,
वो
फहद मुस्तफा।
फहद मुस्तफा
हीरोइन मुझे लगता है तो महविश है या मायरा है, आई डोंट नो एग्जैक्टली। लेकिन क्योंकि दोस्त हमारा है जिसने डायरेक्ट किए नबी,
तो फिर मैं जरूर देखूंगा।
फहद है उसमें।
अच्छा,
ना मालूम अफराद में आई थिंक जावेद शेख साहब भी हैं।
अच्छा,
और भी दो चार लोग हैं।
अच्छा अच्छा,
तो ये क्योंकि हमें इसलिए याद है कि हमारे दोस्त हैं डायरेक्टर साहब, बहुत ही बचपन के अच्छे दोस्त नबील साहब।
ये तो नहीं है 1900 की बनी हुई है?
अरे अभी बनी है, दो चार साल पहले की। पुरानी ढूंढने को 90 मुगले आजम नहीं है।
अच्छा हाँ, जिन्होंने मुगले आजम देखी हो ये तो देख ही सकते हैं, दो चार साल पुरानी।
तो आप जो है ना ये देखिएगा
ना मालूम अफराद। अच्छा अच्छा
हाँ,
अच्छा ठीक है।
और मैं
उसमें तुम भी नजर आओगे?
नहीं मैं नहीं हूँ। और ई आवाज पे जो लोग हमें इस वक्त सुन रहे हैं ना, बल्कि आप ऐसा करिएगा
हाँ।
चलें आपके लिए, देखिए मैं इससे बेहतर वीकेंड का आपको गिफ्ट दे ही नहीं सकता।
अच्छा अच्छा,
आप एक काम करिएगा
हाँ।
आप आज रात तकरीबन 10-10:30 बजे करीब ये आवाज टीवी लगा लीजिएगा। नहीं नहीं, आप ये आवाज टीवी लगा लीजिएगा, मैं आपको नाम मालूम अपराध दिखा दूंगा।
चलो ठीक है,
इससे ज्यादा बड़ा गिफ्ट नहीं दे सकता।
नहीं 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 नहीं,
आपकी वजह से सबका भला हो जाएगा।
अच्छा 10:30 है,
बट 10:30 में लॉक कर
ठीक है, ठीक है, ठीक
हो गया,
ठीक है सही।
मैं आज आपको जो है ना वो कहते हैं मूवी नाइट,
हाँ मूवी नाइट
वीकेंड है, तो नाम मालूम देखें अपराध तफरी करें,
तो वो वाले कौन जो के पापी होते हैं, पाप लेके बैठ
पॉपकॉर्न लेके आप बैठे,
हाँ लेके बैठ जाए,
और आप जो है इस मूवी को आज छोड़े कहीं और कहाँ देखेंगे, मैं आपको ये आवाज टीवी पर,
हाँ हाँ बस वो लगा दो यार, वो मेरे लिए इजी है ना, मैं ढूंढती रहूंगी, स्क्रॉल करती रहूंगी, मैं तो पता ही है कि मैं टेक्नोलॉजी में जीरो हूँ,
मैं चाहता भी नहीं आप ज्यादा मेहनत करें,
हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं मेरे कैलोरी जाया होंगे ना, हाँ तो वो तो करना ही नहीं है,
तो आपको मैं 10:30 के दरमियान आप इसको लॉग इन कर लीजिएगा, तो इंशाल्लाह आप सबके लिए फायदा करा दिया, तो वो नाम मालूम अफराद जो है वो आप आज ई आवाज टीवी पर देखिए, ठीक है। अब आप सुना दें अब तक की गर्मा गर्म
खबरें,
गर्म खबरें सुनाइए।
तुम्हें पता चले
क्या हुआ?
खबरें सुनाने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, वो आज वो एलॉन मस्क आया ना उधर व्हाइट हाउस में लोगों को मिलने के लिए, तो उसके
आखिरी दिन
लोग समझे शायद ये भी कहीं फ्रांस के आसपास होएगा, जोक भी किया उसने, जोक भी किया कि मैं फ्रांस के आसपास नहीं था कहीं पे, तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा ब्रूज कैसे पड़ा हुआ है, तो उसने कहा कि मैं अपने बच्चे के साथ ऐसे ही घोड़ा घोड़ा खेल रहे थे, तो मैंने एक्सीडेंट
तो
बच्चे का भी नाम, तो उसने मुखा कहा अरे बेगम ने हो सकता है मारा हुआ,
मेरे जैसा कोई सीधा आदमी ने सीधा बोल देता, हाँ भाई पिटाए क्या करें,
नहीं नहीं तो उसने कहा मेरे, लेकिन तो ट्रंप साहब ने लुकमा दिया उस पर, उसने कहा कि जो कोई इसके बेटे एक्स को जानता है उसका नाम भी एक्स है, सोचो बेटे का नाम भी
आ चुका था पहले भी, वो
तो वो डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि जिसको इसके बेटे एक्स का पता है ना वो कर सकता था, मैंने उसको डेर दी थी, ओके पंच मी इन द फेस, कहते उसने मारी तो इतना बड़ा ब्रूज उसके, आजकल चांटे बहुत पड़ रहे हैं लोगों को, ये बड़े बड़े लोगों को बड़े बड़े
पढ़ने भी चाहिए ताकि अक्ल ठिकाने आ जाए, अक्ल ठिकाने आ जाए,
कम ही ऐसे करोगे। अच्छा अच्छा चलो ठीक है जी,
खबरें
तो जनाब ये चक्कू था तो आज वो बहुत बड़े सारे ब्रूज के साथ आए, ठीक है जी। अच्छा जनाब दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय राजा बादशाह जी, राजा बादशाह ने देखे ना कितना फायदा कराया, आमिर का $1775 बचाए और अब ये गरीब यूरोप के टूर पे जा रहा है, ठीक है जी। तो अगर आपको भी $1775 बचाने हैं और होम और इंश्योरेंस पे अपने ऑटो इंश्योरेंस पे, तो आप राजा बादशाह जी के पास जाओ और उनका नंबर है 6472903773, और अगर आपको अच्छा खाना खाना है, आज वीकेंड है ना, तो आप फैसल चट्टा के पास जाओ विलेज टेस्ट, तो विलेज टेस्ट के दो रेस्टोरेंट्स हैं, एक मिसेस सागा में एक ओकविल में, तो अगर आपको उधर बैठ के भी खाना है या ऑर्डर डालना है तो आप कॉल कर सकते हैं इनको, फैसल जड़ा साहब को, इनका नंबर है 6477744888। और अगर आपको बंडल डील्स में इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए है और सारा मार्केट जो है उससे आपको थोड़ा कम पैसों पे चाहिए, तो आप सुल्तान भाई के पास जाओ, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस पे 801 बोवे ड्राइव वेस्ट पे है, और उनका नंबर है 9054502828। और जनाब अगर खाने और घूमने और फिरने के बाद आपके दंद जो हैं वो पीले पड़ चुके हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज यू नो, तो फिर आपको जाना है डॉक्टर नाजिया रहमान के पास, तो डॉक्टर नाजिया रहमान के भी जो हैं वो दो डेंटिस्ट्री क्लिनिक्स है, एक मिसेस सागर रोड पे है और दूसरा रिजवे प्लाजा में है, तो अगर आपको कोई भी सुविधाएं चाहिए दांतों की तो आप उनको कॉल कर सकते हैं 9058721100। और अगर आप चाहते हैं कि आपका ट्रक जो है उसका हेल्थ अच्छा रहे तो आप क्विक ट्रक ल्यूब पे जाओ, और क्विक ट्रक ल्यूब जो है वो नैपनी की जो खासतौर पर लोकेशन है बहुत बड़ा इनका वहां पर सेटअप है, आप जा सकते हैं और इनको कॉल भी कर सकते हैं 5196220660, ठीक है जी उधर जाएं। और अगर आपने एक और भी जगह आप जा सकते हैं अगर अच्छा खाना खाना है आपको, तो ओपन माइक कफे पे आप जा सकते हैं, नासिर शाह साहब होते हैं वहां पे, तो नासिर शाह साहब जो है वो कहते हैं जी बहुत अच्छे, अभी तीसरा रेस्टोरेंट वो खोल रहे हैं, यानी कि आप सोचे हैं कि कितना उन्होंने तरक्की कर लिया है कि वो तीसरा रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, तो अगर उधर भी ओपन माइक कफे पे अभी वीकेंड है ना क्योंकि, तो अगर आपको जाना है तो आप उनको कॉल कर सकते हैं 4165266800। और अगर आपकी फैमिली में कोई भी इवेंट आ रहा है और आपको अच्छा ज्वेलरी चाहिए तो आप असलम भाई के पास पायल ज्वेलर्स पे जाओ, पायल ज्वेलर्स में वो कहते हैं हम इंडिया पाकिस्तान और सिंगापुर से ज्वेलरी लेकर आए हैं, और असलम भाई जो हैं वो आपको जाहिर है कि जब आप अरफा जी का नाम लेंगे तो आपको डिस्काउंट भी देंगे, इनका नंबर है 9057907879। और जनाब और आपको क्या क्या बताएं हैं जी, बहुत कुछ आपको बता दिया, चलो खबर कर लेने आऊं। अच्छा जनाब जो सिख ऑर्गेनाइजेशन हैं यहाँ पे कनाडा में, दे आर कॉलिंग ऑन ऑटावा कि वो कह रहे हैं जी कि ये जो आपका ट्रेडिशन चलता ही जा रहा है पांच साल से कि आप मोदी जी को G7 के मीटिंग्स में बुलाते हैं, तो अभी नेक्स्ट मीटिंग जो होने वाला है वो कनास्किस अल्बर्टा में होने वाला है, तो वो कह रहे हैं कि इस पे मोदी जी को नहीं बुलाओ। और मोदी जी जो है उनसे आपको पता ही है कि जो सिख है वो काफी नाराज है, क्योंकि वो कहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट का अलेज्ड रोल इन द किलिंग ऑफ सिख एक्टिविस्ट नियर वैंकूवर, और भी वो कहते हैं जी बहुत सारे वायलेंट क्राइम्स के अंदर अलेज्डली इनका गवर्नमेंट जो है मोदी जी का वो इन्वॉल्व्ड है, तो इसको आप क्यों बुला रहे हैं। अभी जो कनेडियन जो गवर्नमेंट है वो बड़ी टाइट लिप्ड है, वो बता नहीं रही है, और सिर्फ थोड़े से कुछ नाम आए हैं जैसे कि जो साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट है साइरिल रामाफोसा, उनको बोला है तो उन्होंने कभी तक कुछ जवाब नहीं दिया है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज और जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, उनको कहा है तो वो आ रहे हैं। मोदी जी जो है वो एवरी G7 मीटिंग पे होते हैं सिंस 2019, लेकिन टोरंटो बेस्ड सिख जो फेडरेशन फॉर कैनेडियंस है या कि वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग बोल रहे हैं कि भाई इनको आप ना बुलाओ। और कार्नी साहब जो थे उन्होंने अपने पोल कैंपेन पे कहा था कि जी हम जो है अच्छे टाइज चाहते हैं इंडिया के साथ अगर इंडिया चाहता है, और जो है ये जो स्ट्रेन हो गए हैं हमारे टाइज में ये हमारी वजह से नहीं है, तो यानी कि उनकी वजह से है, लेकिन फिर भी अगर वो इसको सुधारना चाहेंगे तो हम उनके साथ अच्छे रिलेशन रखना चाहेंगे। तो अब सिख जो है वो कहते हैं कि इनको ना बुलाओ। ऑन्टेरियो जो है उसमें एक जो है वो एक आइडिया स्टडी कर रहे हैं कि एक मैसिव टनल जो है अंडर हाईवे 401 उसको बनाया जाए ताकि ट्रैफिक कंजेशन कम हो सके, लेकिन एक इकोनॉमिस्ट जो है मैथ्यू टर्नर प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ब्राउन यूनिवर्सिटी एंड फॉर्मर यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो प्रोफेसर है, वो कहते हैं कि सिंपल तरीके भी है इन चीजों को टैकल करने के लिए, यानी कि जैसे ये ग्रिड लॉक जो ये आ जाता है तो उसके अंदर आप जो है वो कुछ दूसरे तरीके अपनाएं। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जिस वक्त रोड्स अब खुले खुले भी करें तो भी जब ये फुल कैपेसिटी हो जाता है तो वहां पे काफी मुश्किल होता है, तो फोर्ड साहब ने प्रॉमिस किया था कि मैं एक ट्रैफिक टनल बनाऊंगा फ्रॉम मिसिसागा ब्रैम्पटन टू वेस्ट ऑफ स्कॉर्ब्रो एंड देन मॉर्कम ईस्ट। उसकी बहुत ज्यादा जो थी वो क्रिटिसिज्म की थी ऑपोजिशन लीडर्स ने, और उन्होंने कहा था कि ये बिल्कुल फीजिबल नहीं है, तो इसकी फीजिबिलिटी अभी जो है वो पढ़ाई जा रही है, और डेडलाइन जो है वो भी वो कहते हैं जी कि उसके ऊपर भी जरा हम काम करेंगे। तो जो मैथ्यू टर्नर साहब हैं वो कहते हैं कि जी ये ट्रैफिक कंजेशन जो है ये लॉस एंजलस में 60-year high है, हालांकि उन्होंने भी बहुत सारे तरीके और बहुत लंबी लंबी सड़कें बनाए हैं। सेंटा मोनिका का जो फ्री वे है वो भी एक्सपेंड किया है, फिर भी कोई रिलीफ नहीं आई है। लॉस एंजलस के अंदर जो है वो कैपेसिटी एड कर रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं है। तो अब इसका उन्होंने इलाज क्या दिया है, उन्होंने इसका इलाज ये दिया, उन्होंने कहा कि जो पीक टाइम होता है उस पर आप गाड़ियों को चार्ज करो। अब जब आप पीक टाइम पे गाड़ियों को चार्ज करने लगते हैं ना तो क्या होता है कि उसमें लोग जो है बहुत ज्यादा फिर गाड़ियां नहीं लाते, उसमें क्या होता है कि लोग फिर जो है वो करने लगते हैं पार्टनरशिप्स करने लगते हैं, जिसको कहते हैं ना कि भाई मेरा नेबर भी अगर उधर ही जा रहा है तो वो उसको हम ले, तो दो दिन तुम लेके जाओ दो दिन हम ले, तो इस तरह गाड़ियां जो हैं वो कम हो जाती हैं। जाहिर है अब इतने ज्यादा पैसे कौन देगा जब आप उनको चार्ज करना शुरू कर देंगे, तो इस तरह से जो है वो कहते हैं जी ये एक तरीका है ट्रैफिक कंजेशन को कम करने के लिए। कनाडा की इकोनॉमी जो है वो फर्स्ट क्वार्टर में जो है जरा तेजी से बढ़ी है और इतना एक्सपेक्टेशंस भी नहीं था। इकोनॉमिस्ट जो थे उन्होंने कहा था कि टैरिफ्स जो है यूएस के वो चीजों को काफी जो है वो स्लो कर देगा, लेकिन फिर भी जीडीपी फर्स्ट क्वार्टर में ग्रो किया है 2.2% से अकॉर्डिंग टू स्टैट्स कनाडा। जीडीपी ग्रू बाय 0.1% इन मार्च आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 0.2% इन फरवरी, और दिस वॉज बेसिकली बाय रीबाउंडिंग इन माइनिंग क्वेरिंग ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स। कैनेडियन डॉलर जो है वो भी जरा फर्म हुआ है अगेंस्ट यूएस, तो ट्रेड कर रहा था 0.07% टू 1.3799 टू यूएस या के 72.47 यूएस सेंट्स पे, और जो ग्रोथ है हाउसिंग मार्केट में वो जरा स्लो रही 0.3% इन फर्स्ट क्वार्टर आफ्टर राइजिंग 1.2% इन द क्वार्टर बिफोर दैट, यानी कि जो फोर्थ क्वार्टर था जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर वन ग्रोथ है इस वक्त वो इट इज लेड बाय एक्सपोर्ट्स जो कि जंप की है 1.6% आफ्टर इंक्रीजिंग बाय 1.7% इन द फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2024 जो कि लास्ट क्वार्टर था, और बिजनेस इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी इक्विपमेंट जो है वो भी इंक्रीज किया है 5.3% से, और इसीलिए जो है जीडीपी ऊपर है। तो अभी आपको पता ही है कि फोर्थ जून को अभी बैंक ऑफ कनाडा जो है अपना लेकर आने वाला है जो एक जो है ओवरनाइट लेंडिंग रेट। तो अब पता चलेगा कि जी वो उसमें कमी ला रहे हैं कि सेम ही रख रहे हैं। तो ये जो है देखने की चीज है आने वाले दिनों में। जॉब्स मिनिस्टर जो है पैटी हैजडो, उन्होंने अब मीटिंग एक रखी थी पोस्टल यूनियन ऑफिशियल्स के साथ इन ओटावा, और कनेडियन यूनियन ऑफ पोस्टल वर्कर्स जो है वो कह रहे हैं कि आफ्टरनून में हम उनके साथ बैठ रहे हैं। और इसके अलावा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर लेबर जॉन जरूचली जो है उनके साथ भी हमारे जो ऑन गोइंग निगोसिएशन है वो चल रहे हैं, जो कि रिज्यूम किए थे अभी वेंसडे को ही। कैनेडा पोस्ट जो है उसने अपना फाइनल प्रपोजल दिया था, जिसमें कि यूनियन को जो कि रिप्रेजेंट करती है 55,000 वर्कर्स को, और उसके अंदर काफी सारे जो इंस्ट्रक्शन कंसेशन हैं वो इंक्लूड किए गए थे, जिसमें कि एंड किया गया है कंपल्सरी ओवर टाइम और साइनिंग बोनस ऑफ अबाउट $1,000। इट स्ट्रक टू प्रपोजल फॉर 14% क्यूमुलेटिव वेज हाइक ओवर 4 years। तो इसके साथ साथ उन्होंने कहा जी के जो पार्ट टाइम स्टाफ है ऑन वीकेंड शिफ्ट्स, उसके ऊपर भी हम जो है बात करेंगे। क्राउन कॉरपोरेशन जो है उसने कहा इस वीक में कि हम नियरली 1.3 बिलियन इन ऑपरेटिंग कॉस्ट हमने फेस किए थे लास्ट ईयर, और इसमें उन्होंने कहा जी कि ये जो आपका बिजनेस मॉडल है शायद ये इतना ज्यादा फीजिबल नहीं है। यूनियन जो है वो अब कह रही है कि हम कल से जो है शायद रैलीज निकाल सकते हैं सारे कंट्री के अंदर। ट्रंप साहब जो है उन्होंने कहा जी कि चाइना जो है वो टोटली वायलेट कर रहा है अपना डील अगेंस्ट यूएस ऑन ट्रेड 2 weeks आफ्टर बोथ ऑफ देम उनके बीच में जो डील हो गया था। आपको पता ही है कि जो ट्रंप साहब हैं वो शी जिनपिंग के साथ बात करते रहते हैं और दूसरे भी चाइनीज जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ बात करते हैं, तो वो कहते हैं जी कि उन्होंने वायलेट किया है यूएस ट्रेड जो फैसिलिटीज है उनको। अपने ट्रूथ सोशल पे इन्होंने लिखा कि जी चाइना जो है उसको हम बहुत ही बैड सिचुएशन से सेव करना चाहते थे और ये बड़ी अच्छी न्यूज थी, हर कोई खुश हो जाता, लेकिन इन्होंने जो है ट्रेड डील वायलेट किया। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट जो है उन्होंने कहा कि ट्रेड डील्स जो चाइना के साथ चल रहे हैं वो अभी के लिए कुछ थोड़े से स्टॉल्ड है, यानी कि पूरी तरह स्टॉल्ड नहीं है, और डिस्कशंस अभी हमको और करना है चाइनीज ऑफिशियल्स के साथ इन कमिंग वीक्स। यूएस स्टॉक मार्केट्स जो हैं जब ये न्यूज आई कि इनका डील फिर से फॉल आउट कर गया तो बहुत उसके अंदर जो है वो देखा गया मंदी देखी गई। S&P जो था वो डाउन था 0.1%, नैसडैक तो 0.3% जो है वो नीचे आया, तो काफी जो है वो प्रॉब्लम देखी गई। फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रों जो है वो कह रहे हैं कि यूरोप और एशिया के बीच में जो है वो दोस्ती होना चाहिए, और ये जो बहुत ज्यादा इंटेंसिफाइड रिफ्ट हो गई है यूएस और चाइना के बीच में, ये जो है इसको खत्म करना चाहिए। प्रेसिडेंट मैक्रों जो है वो बात कर रहे थे आज शंग्रीला डायलॉग इन सिंगापुर में, और उन्होंने अर्ज किया है इंडो पैसिफिक नेशंस को कि वो जो वहां पे जो डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर्स और डिफेंस मिनिस्टर्स आए हुए हैं कि उनके साथ हम कोएलिशन जो है वो बनाना चाहते हैं, और ये जो यूएस और चाइना का राइवलरी है इसको हम खत्म करना चाहते हैं। मैक्रों साहब ने कहा कि फ्रांस जो है वो एक फ्रेंडली कंट्री है और यूएस का एलाय है, लेकिन दूसरों के साथ भी जो है वो दोस्ती कर सकता है, हमारे डिसएग्रीमेंट्स होते हैं और हम कम्पीट करना चाहते हैं चाइना के साथ, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कहा जी कि हम दोस्ती भी करना चाहते हैं। मैक्रों साहब ने कहा कि जो इस वक्त हमने आपको बताया हुआ है कि वो रीजनल टूर के ऊपर है, वो जो है इंडोनेशिया और वियतनाम में भी गए हैं। तो इंडोनेशिया में जब जकार्ता में थे अर्लियर दिस वीक और जब उनकी मुलाकातें थी प्रेजिडेंट प्राबोवो सुबियांतो के साथ, तो वहां पर भी उन्होंने कहा जी कि हम इस इलाके के अंदर फ्रांस जो है अपनी दोस्ती बढ़ाना चाहता है, और बहुत सारे डिफेंस पैक्ट्स भी उन्होंने किए हैं जिसमें कि मुझे तो समझ नहीं आई इंडोनेशिया का दिमाग ठीक है, जिसमें कि उन्होंने कहा जी कि वेपन्स लो, रफेल हमारे से जेट्स भी लो, और स्कॉर्पियन जो है सबमरीन, मुझे लगता है कि ये पूरा फिर पैकेज होएगा जो वो बेचना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त तो रफेल जो है उसके काफी नीचे आगे है जो शेयर्स है। इसके अलावा वो वियतनाम में भी थे, वहां पे भी उन्होंने 10 बिलियन यूएस डॉलर्स के डील्स किए हैं, जिसमें कि उन्होंने कहा कि फ्रेंच असला जो है वो आप लोग, उन्होंने कहा जी कि आसियान और यूरोप जो है वो दोनों जो है इम्पैक्ट होते हैं, ये जो बहुत अनप्रिडिक्टेबिलिटी बन गई है दुनिया के अंदर यूएस टैरिफ्स की वजह से, तो हमको दोस्ती बना के जो है वो रखना चाहिए। ये बहुत ही रेयर विजिट आने वाला है, जिसमें कि सऊदी फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फरहान जो है वो विजिट करेंगे वेस्ट बैंक सिटी ऑफ रमल्ला को, और संडे को, कल नहीं परसों, और इसमें उनकी मीटिंग रहेगी पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट महमूद अब्बास के साथ, क्योंकि जो क्राउन प्रिंस हैं सऊदी के मोहम्मद बिन सलमान, वो अब पुश कर रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि वो रिकग्नाइज करें पैलेस्टीनियन स्टेटहुड। और जो ये प्रॉस्पेक्ट था कि जी सऊदी इसराइल नॉर्मलाइजेशन हो जाएंगे टाइज के, उसके ऊपर मोहम्मद बिन सलमान ने बहुत क्लियरली कहा है कि जिस वक्त तक ये जो है टू सेपरेट एंटिटीज यानी कि इसराइल और पैलेस्टाइन अपने आपस में जो है वो साथ साथ नहीं रहेंगे और जो है पैलेस्टीनियन जो है वो नेशनहुड और स्टेटहुड नहीं माना जाएगा, उस वक्त तक हम नॉर्मलाइज नहीं करते। तो ये अब जो है फरहान जो है प्रिंस फरहान ये वहां पे आ रहे हैं। इसके साथ साथ इनके साथ और भी दूसरे टॉप डिप्लोमेट्स रहेंगे फ्रॉम इजिप्ट, जॉर्डन एंड दूसरे कंट्रीज के साथ, और वो कहते हैं जी ये क्लियर मैसेज दिया जा रहा है कि जो पैलेस्टीनियन इशू है वो अरब्स और मुस्लिम्स के लिए बिल्कुल सेंट्रल है, और इस सिलसिले में इसराइल जो है उसको नोटिफाई किया गया है कि भाई इलाके के अंदर प्रिंस जो है वो कर रहा है टूर कर रहा है। तो जाहिर है यानी उनको बताने की कोशिश की जा रही है कि भाई इस इलाके में होएगा, तो यानी इस इलाके में तुमने बम्बार्डमेंट नहीं करनी, क्योंकि जाहिर है कि सऊदीज को तो ये हाथ नहीं लगा सकते ना, बिल्कुल लगाया तो फिर अमरीका भी इनको फिर नहीं छोड़ेगा। तो इस तरह से सऊदी अरेबिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं जी, उन्होंने बहुत ही ब्लंटली इरानियन ऑफिशियल्स को बताया था तेहरान में लास्ट वीक कि अगर आपने न्यूक्लियर टॉक्स निगोशिएट न किए ट्रंप के साथ तो फिर आपको बहुत ही सीरियस जो है वो प्रॉब्लम्स होएंगे। ये बात जिस वक्त जो है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराकची, उनकी भी जब मुलाकात हुई थी मोहम्मद बिन सलमान के साथ, तो उसमें भी ये बात जो है की गई थी। लेकिन एक जो है वो खास तौर पे जो सऊदी किंग हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज, 89 इयर्स उनकी माशाल्लाह एज है, उन्होंने अपने बेटे प्रिंस खालिद बिन सलमान को खास तौर पे भेजा था ईरान में टू टॉक टू ईरान सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई, और ये बहुत ही क्लोज डोर मीटिंग था वहां पे तेहरान में ऑन April 17th प्रेसिडेंशियल कंपाउंड में, और उसके उस मीटिंग के अंदर प्रेसिडेंट मसूद पेजक्शियां, आर्म फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बागेरी और फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराकची जो थे वो सब थे, जिसमें कि किंग का ये मैसेज जो है उनको दिया गया था। और ये जो सोर्सेस थे उनके मुताबिक मीडिया तक ये जो है वो सारी रिपोर्ट पहुंची है। प्रिंस खालिद जो हैं सऊदी एम्बेसडर टू यूएस थे ड्यूरिंग ट्रंप्स फर्स्ट टर्म, और काफी क्लोज समझे जाते हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से, तो उनको फिर भेजा गया था कि थोड़ा बातचीत करो ईरान के साथ, तो उन्होंने फिर ये वार्निंग जो थी वो ईरान को दी थी। और अभी आपको पता ही है कि कल ही हमने आपको बताया कि इसराइल जो था वो सोच रहा था कि ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक करेगा, तो ट्रंप साहब ने व्हाइट हाउस में जो रिपोर्टर से बात कर रहे थे उन्होंने कहा जी हमने उनको रोका था कि अभी मत करो, अभी हमारी बात चली, तो अभी बातचीत चल रही है ओमान में भी और रोम के अंदर भी इटली में, तो अब देखेंगे जो नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स है उसके अंदर। लेकिन दोनों तरफ से काफी एनकरेजिंग आई है, स्टीव विटकॉफ भी कह रहे हैं कि हमको लगता है कि चीजें शायद आगे बढ़ सकती हैं, और जो है वो इरानियन ऑफिशियल्स भी कह रहे हैं कि ये जो है आगे चीजें चल सकती हैं। हम इधर लेते हैं जी थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक, उसके बाद जब हम आएंगे तो हम पाकिस्तान इंडिया एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स की खबरें जो है फिर आपके साथ करेंगे।
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
Dentistry on Ridgeway by Dr. Nazia Rahman. अब मिसिसागा में दूसरी लोकेशन के साथ, रूट केनाल, वाइट टीपनिंग, इम्प्लांट डेंटिस्ट्री, डेंटल क्राउन्स, विजडम टूथ रिमूवल, क्वालिटी डेंटल केयर पूरी फैमिली के लिए, एक्सेप्टिंग न्यू पेशेंट्स, वॉक इन एंड इमरजेंसी, एक्सेप्टिंग कनाडा डेंटल केयर प्लान। डेंटिस्ट्री ऑन रिजवे बाय डॉक्टर नाजिया रहमान, 3465 लेटेनियम ड्राइव, यूनिट 76, मिसिसागा, फोन 9058200900, 9058200900।
बटाला सुपर मार्केट, बटाला सुपर मार्केट, हलाल मीट ते सब्जियां नाले फल भी ताजा मिलदे, इत्थे मछली अंडे दूध दही ते सस्ते चावल मिलदे, भल्ले पकौड़ियां ताजा मिठाइयां गर्म समोसे मिलदे, बटाला सुपर मार्केट,
स्कारपोरो दी वाहिद ते मिसाली सुपर मार्केट, बटाला सुपर मार्केट, 200 मार्कम रोड स्कारपोरो, मार्कम रोड ते इंग्लैंडन दा संगम, फोन 416-264-3111।
मजे मजे के टिक्के, मजे के कबाब,
खाना हो तो आ जाओ शाही Shaheen Tikka aur Kabab.
All your favorite dishes prepared to perfection at Shaheen Tikka and Kabab.
Mujhe maze de chicken tikke kabab biryani dal tadka.
Lahori style nashta, mazedar kadhai. Mouth-watering kebabs and sizzling barbecue items.
Shaheen Tikka aur Kabab.
In Flemington Mall.
क्या बात है बेटे, बड़ी आवाज नजर आ रही है।
अबू जान, खुदा का वास्ते, इस गाड़ी से प्रोड्यूसर एक गधा गाड़ी खरीदे, हर मोड़ पे रुक जाती है।
और बच्चे परेशान क्यों होती हो? लाओ गाड़ी की चाबी दो, अभी लेकर जाता हूँ प्रीमियम ऑटो रिपेयर। गाड़ी की नब्ज देखकर खराबी की जड़ तक पहुँच जाएंगे।
मेरी सहेली ने भी कहा था,
वहाँ पर कूलिंग सिस्टम, इंजन ट्यूनअप, चार व्हील कंप्यूटर बैलेंस, ब्रेक, नए और पुराने टायर, साफ ऑयल फिल्टर, मुफ्त में चेंज, स्टार्टर, अल्टरनेटर गारंटी के साथ ठीक करते हैं। बस इसके बाद तुम्हारी गाड़ी फर फर भागेगी। 21 मेलविक ड्राइव रिकॉबी को टेलीफोन 416-747-6800।
क्या आप या आपकी फैमिली डेथ, डिसेबिलिटी या क्रिटिकल इलनेस जैसी नागहानी सूरत हाल के लिए तैयार है? अगर नहीं तो सन लाइफ की प्रदीप जी का नाम याद रखिएगा 416-894-5872।
जी हाँ, सलाह मशवरे और किसी भी पॉलिसी के रिव्यू में मैं प्रदीप सिंह आपकी पूरी मदद करूँगा।
ट्रस्ट वर्दी ऑनेस्ट चार्टर्ड लाइफ अंडरराइटर एंड कैनेडियन हेल्थ स्पेशलिस्ट मिस्टर प्रदीप फ्रॉम सन लाइफ 416-894-5872।
और हर ट्यूसडे को मेरे टॉक शो में जरूर शामिल हो।
आयशा, ये तुम क्या सर पकड़ कर बैठी हो?
घर में मेहमान आ रहे हैं और मुझे 10 जगहों पर जाना पड़ेगा ग्रोसरी के लिए।
10 जगह क्यों? एक ही जगह है, फातिमा ग्रोसर्स।
फातिमा ग्रोसर्स?
जी हाँ, फातिमा ग्रोसर्स। मसाले, ताज़ा सब्जियाँ, फल, हलाल गोश्त, मैरिनेटेड मीट आइटम्स और स्पेशल बीफ स्टेक्स भी। ग्रोसरी का सारा सामान साजो आवाज के रेफरेंस पर स्पेशल डिस्काउंट भी। मैकलॉगलन और ब्रिस्टल के इंटरसेक्शन पर न्यू फातिमा ग्रोसर्स, 512 ब्रिस्टल रोड, वेस्ट ऑफ मिसिसागा, 9058487000। फातिमा ग्रोसर्स, सबसे जबरदस्त।
ताजा सब्जियां लई तुहाडा अपना फार्म कैलडर सब्जी फार्म, जिथे तुसी लै सकदे हो निखरे पौधे, मिट्टी, गमले अते हर तरह दे फुल ते सब्जियां दी पनीरी। अपने घर विच कोई भी सब्जी या फुल दे पौधे उगाण लई कैलडर सब्जी फार्म ते आओ। असी सवेरे 9 बजे तो शाम 8 बजे तक तुहाडी सेवा लई हाजिर हां। 12050 एयरपोर्ट रोड कैलडर, जां तुसी फोन करो 9058409000। 905-840-9000।
हाँ जी, तो अब हम चलते हैं खबरों की तरफ। फिर से पीटीआई जो है उसने एग्री किया है कि वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके साथ बातचीत करेंगे, लेकिन विद कंडीशंस। अब वो कंडीशंस क्या है हम आपको बताते हैं। एक इंटरव्यू हो रहा था जिसके के अंदर मीडिया पे सेनेटर जो हैं शिबली फराज, पीटीआई के सीनियर लीडर भी हैं, उन्होंने कहा जी कि हम किसी के साथ भी नेशनल इश्यूज के ऊपर बात कर सकते हैं और हम जो है कोई भी ऐसा नहीं है कि हम पावर जो है अपने पास कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। इससे पहले भी उन्होंने कहा कि जी पीटीआई जो थी उसने गवर्नमेंट के साथ टॉक्स शुरू किए थे, लेकिन वो खत्म इसलिए हो गई थी क्योंकि गवर्नमेंट जो थी बहुत ही नॉन सीरियस थी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो ऐसे अचीव नहीं की जा सकती है कि एक तरफ तो आपने हमारे लीडर इमरान खान साहब को जो है वो जेल में डाला हुआ है और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जी हमको बात करना चाहिए, लेकिन फिर भी नेशनल इशू रहेगा तो हम बात करेंगे। यानी उनका मतलब यह है कि भाई हमारे साढ़े लीडर कडो होने हैं ना, तो जो है वो बात तब हम करेंगे या बात अदरवाइज भी करेंगे, लेकिन उनके बारे में भी कुछ सोचो, ऐसा भी कुछ है। इसहाक डार साहब जो है उन्होंने कहा जी कि हम अब डिप्लोमेटिक मिशन जो है काबुल के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, वो अपग्रेड कर रहे हैं और वहां पे अब हम अम्बेसडर अपॉइंट कर रहे हैं इन प्लेस ऑफ चार्डी अफेयर्स। एक्स के ऊपर उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान अफगानिस्तान टाइज जो है वो बहुत ही पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्रीज पे है और मेरा जो बहुत ही प्रोडक्टिव विजिट रहा था काबुल में ऑन अप्रैल 19 को, उससे ये चीजें आगे चल रही हैं। उन्होंने कहा जी कि हम दोनों को मिलकर काम करना है और एंगेजमेंट को हम एनहांस करेंगे। पाकिस्तान अफगान कोऑपरेशन ऑन इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी जो है, काउंटर टेररिज्म, ट्रेड, सबके ऊपर हम बात करेंगे क्योंकि हम दो फ्रिटर्नल कंट्रीज हैं। दोनों के मुल्कों में जो कैपिटल्स है उसके अंदर इनके एम्बेसीज तो है लेकिन उसके अंदर अम्बेसडर्स नहीं है, सिर्फ चार्डी अफेयर्स है। तो आज पाकिस्तान ने उसको अपग्रेड किया है। इसके अलावा पाकिस्तान ने बहुत दफा इनको बोला है कि भाई टीटीपी जो है उसको रोको कि वो अटैक कर रहा है कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान के ऊपर। हमने आपको भी परसों ही बताया था कि अफगान तालिबान के जो سینئر لیڈر ہیں سعید اللہ سعید، انہوں نے بہت زیادہ وارننگ دیا تھا ٹیررسٹوں کو کہ بالکل پاکستان کے اوپر اٹیک جہاد کے نام پہ نہ کرو، یہ حکم صرف امیر دے سکتا ہے اور اگر امیر نے نہیں دیا تو یہ مت کریں، یہ جہاد نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ افغانستان کی طرف سے بھی اب کوشش ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے اچھی جو ہے وہ یعنی کہ دوستی بنا کے رکھا جائے۔ آج ایک اچھا کام جو پاکستان میں ہویا ہے وہ یہ ہے کہ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ بل 2025 جو ہے اس کے لیے ایج فکس کر دی گئی ہے 18 ایئرز، اور اس کے اوپر سائن کیے ہیں پریزیڈنٹ زرداری نے۔ یہ جو لیجسلیشن ہے یہ منع کرتا ہے کہ نکاح خان جو ہے یعنی کہ جو شادی کرانے والا بندہ ہے جو بھی ہے کوئی، وہ یہ دیکھے کہ برائیڈ یا گروم میں سے اگر کوئی بھی 18 ایئر سے کم ہے تو وہ اس کو شادی نہیں کر سکتے۔ پریزیڈنٹ زرداری جو ہیں انہوں نے آج اس کے اوپر سائن کیا ہے لیجسلیشن کے اوپر، اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہے یہ کیا جا رہا ہے۔ اچھا پریزیڈنٹ زرداری جو ہیں انہوں نے کہا جی کہ یہ دیکھا جائے کہ لڑکا اور لڑکی میں سے کوئی بھی ایک بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے اس کے اندر، اور اگر ایسے اس کو فالو نہ لا کو کیا گیا تو 100,000 کے قریب جو ہے آپ کو سزا بھی مل سکتی ہے۔ پی 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 کی جو سینیٹر ہیں شیری رحمان، انہوں نے بھی آج زرداری صاحب کی تعریف کی اور انہوں نے کہا جی یہ بہت ہی امپورٹنٹ قسم کا جو ہے وہ بل ہے۔ پاکستان اور انڈیا جو ہیں وہ ریڈیوس تو کر رہے ہیں ٹروپس کو لائن آف کنٹرول پہ، لیکن کانفلکٹ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا ذکر کیا چیئرمین آف جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ کرائسس جو ہے کبھی بھی ابھی فیوچر میں آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے۔ یہ سنگاپور میں ہیں اور یہ اٹینڈ کر رہے ہیں شنگریلا ڈائیلاگ فورم، اور انہوں نے کہا جی کہ ابھی تو کچھ نہیں ہوا ہے لیکن کوئی بھی اسٹریٹجک مس کیلکولیشن اگر ہوئی تو یہ جو کرائسس ہے یہ بہت ہی نیکسٹ لیول پہ جائے گا اور اس کا ریسپانس بھی پھر بہت ڈفرنٹ ہوئے گا۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ رسک آف ایسکلیشن جو ہے اس میں ظاہر ہے کہ فلیش پوائنٹ تو کشمیر رہے گا، لیکن کشمیر تک پھر یہ رکا نہیں رہ جائے گا کیونکہ دونوں ہی نیوکلیئر اسٹیٹس ہیں، تو اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ریسٹرینٹ شو کیا جائے دونوں کی طرف سے، کیونکہ نیکسٹ ٹائم جو اگر لڑائی ہوئی تو اس میں پورا ہندوستان اور پورا پاکستان جو ہے وہ بھی برباد ہو سکتا ہے، اور یہ بہت زیادہ ڈینجرس ٹرینڈ ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ اگر انٹرنیشنل میڈیشن جیسے ابھی کرائی گئی تھی تو اس وقت بھی کرائی جائے گی۔ انہوں نے کہا ہاں اگر ویسا ونڈو رہا کہ جس میں کہ انٹرنیشنل میڈیشن ہو سکی تو پھر تو ہوئے گی، لیکن اگر یہ اس ونڈو سے بیونڈ چلا گیا تو پھر یہ جو ہے یہ ونڈو بھی بند ہو جائے گی اس میں، اگر کسی نے بھی جو ہے یعنی کہ اپنے یہ نیوکلئر جو ہیں وہ آرمز یوز کر لیے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جو کرائسس ہے یہ صرف یہ جو ہاٹ لائن پہ بات کر لیتے ہیں ڈی جی ایم اوز، اور کبھی کبھی جو ٹیکٹیکل لیول پہ بارڈر پہ بات کر رہے ہیں تو یہ کمیونیکیشن جو ہے یہ انف نہیں ہے، اور لیکن انہوں نے کہا کہ کوئی بھی بیک چینل ڈسکشن اس وقت انڈیا کے ساتھ نہیں چل رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو، اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا ابھی جو آپ یہاں پہ جنرل انیل چوہان جو ہیں انڈیا کے چیف آف ڈیفنس سٹاف وہ آ رہے ہیں ان سے ملاقات کریں گے، تو انہوں نے کہا جی میرا کوئی ایسا پلان نہیں ہے۔ انہوں نے اس لیے یہ بات کی کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہوتے ہیں اس طرح کے کرائسس وہ کبھی بھی بیٹل فیلڈ کے اوپر آپ نہیں کر سکتے ہیں جیت سکتے ہیں، وہ ٹیبل پہ جیت سکتے ہیں، اس لیے ڈائیلاگ بہت ضروری ہے۔ ایسا ہے پاکستان نے جوائن کیا ہے جی چائنا اور دوسرے فاؤنڈنگ ممبرز کو ٹو سائن کنونشن ان ہانگ کانگ آفٹر بیجنگ جو ہے اس نے کہا کہ ہم ایک نئی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اینڈ پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن آف یونائیٹڈ نیشنز ان دا ہیگ کے لیول کے اوپر یہ ایک لے کر آ رہے ہیں، اور یہ اس لیے لے کر آ رہے ہیں کیونکہ یہ جو جیو پولیٹیکل ٹینشنز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی کہ اس کی وجہ سے ہانگ کانگ جو ہے اس کا بھی جو ہے وہ سینٹر میں ہو جائے گا کہ کوئی بھی اگر اس علاقے میں کسی کے ڈسپیوٹس رہے گے تو وہ یہ سالو کر سکے گے۔ ان کے جو لیڈر ہیں جان لی انہوں نے کہا اس کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں پاکستان، انڈونیزیا، لیوس، کمبوڈیا، سربیا اور چائنا تو ہے ہی، اور یہ سارے فاؤنڈنگ ممبرز ہیں جنہوں نے کہ سائننگ سیرمونی میں پارٹیسپیٹ کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ 20 انٹرنیشنل باڈیز انکلوڈنگ یونائیٹڈ نیشنز وہ بھی شاید ہم کو جوائن کر سکتے ہیں۔ اسحاق دار صاحب جو یہاں پہ تھے انہوں نے سائن کیا یہ کنونشن آن اسٹیبلشمنٹ آف انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار میڈیشن آن بہاف آف پاکستان۔ انہوں نے چائنیز لیڈرشپ کی بہت زیادہ تعریف کی فار اٹس ویژن اینڈ ایفرٹس کہ انہوں نے یہ اس طرح کا جو ہے اسٹیپ لیا ہے جس کی وجہ سے علاقے کے اندر پیس اور اسٹیبلٹی اور ڈیولپمنٹ آئے گا۔ انہوں उन्होंने री अफर्म किया पाकिस्तान का कमिटमेंट। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान हमेशा पीसफुल जो रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स है उसकी तरफ जाता है और इंटरनेशनल कोऑपरेशन चाहता है। उन्होंने कहा जी कि इंडिया ने जो अभी यूनिलैटरली हमारे ऊपर हमला किया था वो बिल्कुल गलत था, उसको कंडेम किया, और अभी जो सस्पेंड कर दिया है इंडस वाटर ट्रीटी जिसके ऊपर आज शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि हम उसको करने नहीं देंगे। कैसे नहीं करने देंगे, वो कर देंगे तो फिर आप क्या करोगे, लड़ाई करोगे? तो बहरहाल जी, और वो कह रहे हैं जी कि कॉन्स्टेंटली ये जो ऑक्यूपेशन और ओप्रेशन चल रहा है इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर पे, इसको रिजॉल्व होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रेलिवेंट यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशंस एंड एस्पिरेशंस ऑफ द कश्मीरी पीपल। तो उसके लिए जो है आज उन्होंने काफी बात की। अच्छा जनाब, पाकिस्तान के अंदर तो लग रहा है कि क्रिप्टो जो है वो अब काफी उसके ऊपर अंदर जोर आ गया। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल जो है उसने बहुत ही हाई लेवल मीटिंग जो है वो बुलाया है अब June 2 को टू डिस्कस फ्यूचर रेगुलेटरी एंड लीगल फ्रेमवर्क फॉर डिजिटल करेंसीज। तो वो कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो लैंडस्केप जो है उसको हमको बढ़ावा देना है। ये मीटिंग चेयर करेंगे फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब और स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब, जो कि अभी वेगस में थे, वो यहां पे करेंगे क्योंकि पीसीसी के वो सीईओ है। पीसीसी मतलब पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल। तो उन्होंने कहा जी कि इसके अंदर हम ये एक फ्रेमवर्क बनाएंगे कैसे गवर्न करना है डिजिटल एसेट्स को और वर्चुअल एसेट्स को, और इसके लिए टेक्निकल एडवांसमेंट और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को कैसे फॉलो किया जा सकता है। पीसीसी जो थी उसको फॉर्म किया था मार्च में टू रेगुलेट डिजिटल एसेट्स इन पाकिस्तान, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज अभी भी इलीगल और बैंड है पाकिस्तान में। तो अब चूंकि ट्रंप साहब जो है इसके ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ावा इसको दे रहे हैं, तो जाहिर है कि पाकिस्तान जो है वो भी इंटरेस्टेड है। ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने आज बहुत ही स्ट्रांगली कंडेम किया है आर्बिट्ररी अरेस्ट ऑफ ह्यूमन राइट डिफेंडर्स ताहिरा अब्दुल्ला एंड समीना उमर इन इस्लामाबाद, और इनको जो कस्टडी में लिया गया है आउटसाइड नेशनल प्रेस क्लब अहेड ऑफ द प्रोटेस्ट इन सॉलिडारिटी विद द पीपल ऑफ गाजा। तो उन्होंने कहा जी, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि इन्होंने कोई भी वायलेशन नहीं किया है जिसकी वजह से इनके ऊपर सेक्शन 144 लगाया गया है, जो पुलिस ने अलेज किया। सेक्शन 144 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है वो एम्पावर करती है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो चार या चार से ज्यादा लोग अगर असेंबल्ड है तो उनको रोक सकते हैं फॉर लिमिटेड पीरियड। लेकिन वो कहते हैं जी यहां पर तो चार लोग अभी थे ही नहीं, अभी तो ये दो ही खड़ी हुई थी, तो इनको आपने पकड़ लिया है, ये इनको इमीडिएटली रिलीज करो क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और अनकंडीशनली हम आस्क करते हैं कि आप इसको रोकें। ये प्रोटेस्ट जो था ये ऑर्गेनाइज किया था फॉर्मर जमात इस्लामी के जो सेनेटर है मुश्ताक अहमद खान ने, और इन दोनों को जो है लेडीज को कस्टडी में लिया है एट विमेंस पुलिस स्टेशन इन सितारा मार्केट इस्लामाबाद, और इनको चार्ज किया गया है अंडर सेक्शन 188 डिसओबीडियंस टू ऑर्डर। तो वो कहते हैं ऑर्डर किधर दिया पुलिस ने कि आपको असेंबल नहीं होना, और अगर होना भी था तो ये तो दो ही लेडीज थे, अभी तो वहां पे जमा हुए नहीं थे, तो आपने कैसे इनको पकड़ा। एंटी टेररिस्ट कोर्ट जो है जी इस्लामाबाद में एटीसी उसने सेंटेंस किया है पीटीआई के मेंबर्स इंक्लूडिंग एमएनए अब्दुल लतीफ को टू 27 इयर्स जेल फॉर अटैकिंग पुलिस स्टेशन ड्यूरिंग May 9, 2023। राइट्स एटीसी स्पेशल कोर्ट 2 के जो जज है ताहिर अब्बास सिप्रा, उन्होंने कहा जी कि ये जो इनको पनिशमेंट दी जा रही है अंडर डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पाकिस्तान पीनल कोर्ट है, क्योंकि ये एक्यूज जो है इसको गिल्टी पाया गया है इस अटैक के अंदर, और ये और जितने भी बाकी के पीटीआई के मेंबर्स हैं उनको फाइन भी किया गया है ₹327,000। एमएनए अब्दुल लतीफ जो है उनको इलेक्ट किया गया था NA1 चित्राल से, वो उस वक्त कोर्ट में प्रेजेंट नहीं थे। वो कह रहे हैं जी इनको हम 5 साल के लिए डिसक्वालीफाई भी कर रहे हैं आफ्टर कन्विक्शन। जज ने कहा कि दूसरे जो 20 विटनेसेस है जिसमें के जो है वो जिन्होंने के इनके सारे वो मैजिस्ट्रेट थे और इनके जो रिकॉर्ड किए थे टेस्टिमोनियल्स इनके अगेंस्ट, उन सबको भी पकड़ा जाए और प्रोटेस्ट जो है वो पीसफुली करने चाहिए, इस तरह नहीं कि आप अटैक करें, क्योंकि जो ये जो पुलिस स्टेशन के में जो थे पुलिस वाले थे उन्होंने शिकायत इनके ऊपर लगाई थी कि इन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया था उस वक्त। हालांकि अब इसकी कोई वो तो एविडेंस तो नहीं है, लेकिन फिर भी उस वक्त जो थे कोर्ट के अंदर चार एक्यूज जो थे वो प्रेजेंट थे, और उनके नाम है मीरा खान, मोहम्मद अकरम, शाहजेब और सोहेल खान। तो उसके बारे में कोर्ट ने कहा जी कि इमीडिएटली इनको कस्टडी में आप ले लो, पुलिस ने जो लिया, और उसके बाद जो है बाकी के जो पीटीआई सपोर्टर्स हैं उनके लिए अरेस्ट वारंट्स अभी कोर्ट ने दिया है कि जो कोर्ट में नहीं थे तो उनको भी पकड़ा जाए। آج جناب اچھا وہ کہتے ہیں نا وہ پنجابی میں جتھے دی کھوتی اتھے آنکھ کھلوتی, آپ بولتے رہو ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے پھر ویسا آپ بول دو ہاں ایسا ہے. آج جناب خود ہی ہم تو بڑے عرصے سے بول رہے تھے, جو آئی ایس آئی کے ہیڈ تھے جنرل شریف صاحب وہ بول رہے تھے, باقی ساری دنیا بول رہی تھی, انٹرنیشنل پریس بول رہا تھا, لیکن ہندوستان نہیں مان رہا تھا. آج ابھی کیا ہوا ہے, سینئر بی جے پی کے جو لیڈر ہے سبرامنیم سوامی, انہوں نے آج ایڈمٹ کر لیا ہے کہ پاکستان نے ہمارے 5 طیارے انکلوڈنگ رافیل جو ہے وہ گرائے ہے. ایک انٹرویو دے رہے تھے اور انہوں نے کہا جی کہ انڈین پلینز جو ہے وہ ایئر کامبیٹ جو پاکستان کے ساتھ رہا جنہوں نے ڈپلوائے کیے تھے چائنیز فائٹر جیٹس, انہوں نے ہمارے جیٹس کو جو ہے ڈیفیٹ کیا اور آؤٹ پرفارم کیا فرینچ میڈ رافیل جیٹس کو جو کہ نیو ڈلہی نے یوز کیا, یعنی کہ جو انڈیا نے یوز کیا تھا. چائنیز پلینز جو ہیں وہ گڈ ہیں, انہوں نے خود ہی کہا اپنے منہ سے وہ گڈ ہیں, فرینچ گڈ نہیں ہیں, اور یہ اکارڈنگ ٹو کینیڈا جو انڈیا کے نیڈز ہیں وہ نہیں ہیں. اس کے بعد انہوں نے بہت بڑے, حالانکہ یہ بی جے پی کے خود لیڈر ہیں, انہوں نے مودی جی کے اوپر آج بہت بڑے جو ہیں ایلیگیشنز لگائے ہیں سوامی صاحب نے. انہوں نے کہا کہ یہ کرپشن جو ہے رافیل کے طیاروں کی خرید کے اندر اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے, لیکن یہ اس وقت تک انویسٹیگیٹ نہیں ہوئے گا جس وقت تک مودی جی جو ہے وہ ہندوستان کے پرائم منسٹر رہے گے. مودی جی جو ہے اس کو ایک اوپن پروب کروانا چاہیے کہ یہ جو ایئر کرافٹ کے لاسز ہے یہ کیسے ہوئے ہیں, لیکن مودی جی جب تک پاور میں ہیں آپ تو اس کے اوپر ڈسکشن بھی نہیں کر سکتے, تو آپ انویسٹیگیشن کیسے بٹھاؤ گے. اور انہوں نے کہا جی کہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جیٹس جو ہے کیسے گرے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری ایمبیگوس باتیں جو ہیں اور جو جھوٹ ہے وہ تو آپ کو چلتا, آپ کو پتا ہی ہے نا مودی جی کے بھارت میں اب جھوٹ بھی کافی چلتا ہے اور وہ میڈیا تو ان کا ہر وقت ہی جھوٹ کا ہی بناتا رہتا ہے. تو اس سے پہلے میڈیا کے اوپر چل رہا تھا کہ ہم نے پاکستان کو برباد کر دیا اور اس کے F-16 گرائے اور یہ کیا اور وہ کیا, حالانکہ اس کا کچھ بھی پشتی نہیں تھا اس چیز کا. اس سے پہلے ایئر مارشل جو ہیں ان کے انڈیا کے اے بھارتی, ان سے پوچھا تھا کہ یہ کامبیٹ جو ہے اس میں ہمارے کتنے طیارے گرے ہیں, تو انہوں نے کہا جی ہمارے سارے جو پائلٹس ہیں وہ سیف پہنچ گئے. حالانکہ اب یہ بھی نیوز ہے کہ بہت سارے پائلٹس بہت سیریسلی انجرڈ ہیں اور وہ جو ہیں ہاسپٹلز میں ہیں. بہرحال انہوں نے کہا جی کہ کامبیٹ میں لاسز تو ہوتے رہتے ہیں. اب لوگوں نے جب پوچھا کہ کیا لاس ہوا ہے وہ تو بتاؤ, تو وہ انہوں نے نہیں بتایا تھا. تو آج بہرحال جی سبرامنیم سوامی صاحب نے مان لیا کہ پاکستان نے جی 5 ہمارے جہاز گرائے ہیں. اب ہندوستان میں جناب بہت ساری لڑائی شروع ہو گئی ہے مودی جی اور اپوزیشن کے بیچ میں ایک دفعہ پھر. اب حوالہ کہ آپ سوچ رہے ہوئے گے کہ کوئی الیکشنز تو نہیں آ رہے, نہیں الیکشنز آ رہے ہیں بہار میں, لیکن وہ سپٹمبر اکتوبر میں ہیں, ابھی نہیں ہے. لیکن پھر بھی آج اپوزیشن بہت زیادہ بھڑکی ہوئی ہندوستان میں نظر آئی. تلنگانہ کے چیف منسٹر جو رویندر ریڈی ہے اس نے بھی آج مودی جی سے سوال کیا, انہوں نے کہا جی بتاؤ کتنے رافیل طیارے جو ہے آپریشن سندھور میں آپ نے گنوائے ہیں. مودی جی آپ نے یہ جو رافیل طیارے لیے تھے بتاؤ پاکستان نے ان میں سے کتنا گرایا ہے, آپ اس کے اوپر کیوں ڈسکشن نہیں کرنے دے رہے ہو, بتاؤ ہم نے کیا کچھ لوز کیا ہے اس جنگ کے اندر. آپ پرائم منسٹر ہو, آپ کو جواب دینا پڑے گا اور ہم آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے. آپ مجھے یہ بتاؤ کہ, یعنی کہ یہ ریڈی صاحب بول رہے ہیں مودی جی کو, ریڈی صاحب بول رہے ہیں کہ آپ بتاؤ کہ یہ جو کروڑوں روپے کے کانٹریکٹس آپ نے اپنے فیورٹ لوگوں کو دیے تھے ان کے بارے میں بتاؤ, کیونکہ یہ جیٹس تو جو ہے وہ فلوپ کر گئے, تو ان لوگوں کا نام بتاؤ. اس کے اوپر ظاہر ہے کہ بی جے پی بھڑک گئی. بی جے پی کے جو ایم پی تھے سمبت بترا, انہوں نے کہا جی کہ راہل گاندھی, جیرم رمیش, ریوندر ریڈی, یہ سارے کے سارے جو ہے یہ پاکستان کی زبان بول رہے ہیں. یہ جو پاک کے ببر ہیں, یعنی کہ ببر شیر جو شیر ہے وہ ہندوستان کے گبر ہیں. آپ نے وہ دیکھی ہے فلم چولے, اس کے اندر امجد خان تھا گبر سنگھ, تو یہ وہ اس کے اوپر بول رہے تھے. اور ببر انہوں نے کیوں کہا, کیونکہ اکثر جو ہے راہل گاندھی وہ اپنے سپورٹرز کو ببر شیر بولتے ہیں, تو اپنے سپورٹرز کو کہتے ہیں ببر شیر بنو اور جنگ کرو اور یو نو مودی جی کے خلاف, اور یہ تو وہ انہوں نے دونوں ہی چیزیں جوڑ دی. انہوں نے کہا یہ جو پاکستان کے ببر ہے یہ ہندوستان کے گبر ہے, اور یہ تم لوگ کیوں نہیں پوچھتے ہو کہ پاکستان کے کتنے ایئر بیسز ہم نے ڈیمیج کیے, ان کے کتنے ٹیررسٹ مارے اور ان کے کتنے کیمپس ڈسٹروائے کیے, تم کیوں پاکستان کے حق میں بولتے ہو, حالانکہ یہ تو ہے نہیں, کوشچن کیا انہوں نے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو دیدی ہے آج جو ویسٹ بنگال کی چیف منسٹر ہیں ممتا بینرجی, وہ تو بہت ہی زیادہ غصے میں نظر آئیں, اور انہوں نے کہا جی کہ مودی جی نے یہ فائٹ کر کے ہندوستان کا جو ہے امیج خراب کیا ہے, اور یہ کہا تو صحیح انہوں نے کہ کراس بارڈر ہم ٹیررزم کر رہے ہیں, ٹیررزم کو روکنے کے لیے کر رہے ہیں آپریشن سندھور, लेकिन इसको ये आप पोलिटिसाइज कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि वो अपने आप को समझते क्या हैं, मोदी जी अपने आप को क्या समझते हैं, वो ये समझते हैं कि वो जो कुछ करेंगे एंड ही विल गेट अवे विद दिस, और वो जो चाहेंगे वो करेंगे। तो मैं उनको डेयर करती हूं कि वो यहां पे बंगाल में कल ही इलेक्शंस करा के बताएं, अगर उनके अंदर इतने गट्स है तो हम देख लेंगे कि वो जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं। कभी वो अपने आप को चाय वाला बोलते हैं, कभी अपने आप को सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं, और कभी कहते हैं कि मैं अब जो है सिंदूर बेच रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा मोदी जी को, उन्होंने कहा यह सिंदूर बेचने की चीज नहीं है, ये सिंबलाइज करती है हमारी हिंदुस्तानी औरतों की सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी, तो आपको शर्म आनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा जी ये जो ब्लू फिल्में जो हैं यूपी की सड़कों के ऊपर हाईवेज के ऊपर चल रही है, तो उसके बारे में थोड़ा ख्याल करो। ये यानी आपको बता दें कि ये क्या स्कैंडल था, ये स्कैंडल ये था कि बीजेपी का एक एमपी जो था वो एक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यूपी की सड़क पे दिन दिहाड़े जो है वो पकड़ा गया इंटीमेट जो है एक्शन के अंदर, तो लोग तो हैरान हो गए। अभी भी हिंदुस्तान थोड़ा सा तो कंजर्वेटिव है, दिन दिहाड़े गाड़ी के अंदर हाईवे के ऊपर आप मतलब ऐसे इंटीमेसी में पकड़े गए, तो वो उसका वो जिक्र कर रही थी। तो उन्होंने कहा जी कि आप वो जो वो है उसके ऊपर आप थोड़ा ध्यान दो और आपको शर्म आना चाहिए। और फिर उन्होंने ट्रंप साहब का जिक्र किया है, वो उन्होंने कहा जी कि ट्रंप साहब ने कहा कि उसने ब्रोकर किया डील इंडिया और पाकिस्तान के बारे में, तो यूएस के सामने तो आपके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला है, तो आप सिर्फ जो है अपोजिशन के खिलाफ कॉन्स्परेसीज कर सकते हैं और आप डिविजन्स पैदा कर सकते हैं कम्युनिटीज के बीच में। ममता बनर्जी ने कहा कि आप डिविसिव पॉलिसी खेल रहे हो मोदी जी, और आप जो इस ऑपरेशन में अपोजिशन पार्टीज ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था, लेकिन अब आप अपोजिशन पार्टीज को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। शेम ऑन यू, शेम ऑन योर गवर्नमेंट, शेम ऑन बीजेपी। ये हमारी दीदी ने बोला मोदी जी को। अच्छा, इसके साथ साथ शशि थरूर साहब जो है अब उसके ऊपर भी भड़क गए हैं लोग। शशि थरूर साहब आपको पता ही है कि यात्रा पे निकले हुए हैं ऑपरेशन सिंदूर का अपनी तरफ से सक्सेस बोलने के लिए, लोगों को पैनामा के अंदर थे, तो उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक्स फॉर द फर्स्ट टाइम उस वक्त हुई, हमने घुस के उस वक्त पाकिस्तान ने मारा जब मोदी जी जो थे वो आए, और 2016 में हम ये किया। अब उनकी अपनी खुद की जो पार्टी है कांग्रेस वो बहुत ज्यादा भड़क गई, उसने कहा कि जिस पार्टी ने तुमको पाला पोसा इतना कुछ किया थोड़ा शर्म करो, तुम तो उसी के खिलाफ जा रहे हो। मनमोहन सिंह के साहब के जमाने में भी हमने घुस के पाकिस्तान में मारा था, इतना डिसऑनेस्टी जो है पार्टी को मत दिखाओ, और जो है काफी इनको, क्योंकि जाहिर है वैसे भी कांग्रेस भड़की हुई है कि भाई तुम कांग्रेस के बंदे हो तुम क्यों मोदी जी के कहने पे जो है गए हो। लेकिन शशि थरूर का कहना था कि भाई ये नेशनल ड्यूटी है, उन्होंने मुझे चुना है, उन्होंने अपने एक्स के ऊपर भी कहा था कि जी इट्स एन ऑनर कि मुझे कहा है मोदी जी ने कि मैं करूं। अब कांग्रेस कहती है तुम हमारे पार्टी के बंदे हो तुम क्यों गए उनके कहने पे, वो अपनी पार्टी का खुद कोई बंदा बीजेपी का भेजते। लेकिन बात तो वही है ना, एक तो शशि थरूर साहब जो है गुड लुकिंग बहुत है, ऊपर से अंग्रेजी तो ऐसी जालम बोलते हैं ना कि उन जैसा तो अंग्रेजी अंग्रेज भी नहीं बोलता है, तो अभी ऐसा अंग्रेजी बोलने वाला शायद बीजेपी के पास कोई नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि कांग्रेस से थोड़ा उधारी लेना पड़ेगा है ना, तो इसलिए उन्होंने भेजा। अब कांग्रेस तो नाराज हो गई उस पर, तो इसलिए जनाब ये चक्कर चल रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा जनाब, फिल्म मेकर जो हैं हॉलीवुड के बहुत बड़े क्रिस्टोफर नॉलन, आपको पता ही है उनकी फिल्म आई थी कुछ अर्सा पहले ओपनहाइमर, वो साइंसदान जिसने के एटॉमिक बॉम्ब बनाया था है ना जी, ओपनहाइमर उन्होंने बनाई थी, जिनके के दोस्त थे हमारे पाकिस्तान के डॉक्टर अब्दुल सलाम भी है जी, तो बड़ी दोस्ती थी बड़ा प्यार था उनके भी। तो ओपनहाइमर जो उन्होंने बनाई थी तो लग रहा था कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव मूवी बनाई है, क्योंकि 100 मिलियन US डॉलर का इसका बजट था। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है नादानों, क्रिस्टोफर नोलन जो है उसके दूसरा एक और जो फिल्म था द डार्क नाइट राइजेस जो कि रिलीज हुआ था 2012 में, ये उनका सबसे एक्सपेंसिव मूवी था, इसके ऊपर आमिर साहब 250 मिलियन US डॉलर्स लगाए थे बनाने में, खाली में बनाने में, और वो कहते हैं जी इतना ग्रैंड स्केल था और एक्शन सीक्वेंसेस थे और बहुत ही एक्सटेंसिवली इसमें आईमैक्स का यूज किया था, लेकिन इसमें पैसा पूरा वसूल हुआ क्योंकि इस फिल्म ने ग्लोबली 1.08 बिलियन US डॉलर कमाया है जी। तो ऐसा हेली बेरी जो है उसने जना बीवर सॉरी हेली बीवर जो है उसने अपना स्किन केयर ब्रांड जो है रोड वो बेच दिया है एल्फ ब्यूटी को फॉर 1 बिलियन US डॉलर्स। इसको इन्होंने फाइंड शी फाउंडेड दैट इन 2022 और ये बहुत ही फेमस हो गया था फॉर मिनिमलिस्टिक स्किन केयर ऑफरिंग के लिए। मार्च में ये रिपोर्ट आया था कि शायद 200 मिलियन के नेट पे ये इसको बेच रही है, और फैंस जो थे वो सोच रहे थे कि ये बेचारी इसलिए अपना बेच रही है क्योंकि जो जस्टिन बीबर है वो उसके बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आगे है। लेकिन एल्फ के जो ब्यूटी सीईओ हैं तारंग अमीन, उन्होंने बहुत ज्यादा तारीफ किया इनका जो है हेली का, और उन्होंने कहा कि नहीं, ये इसने प्रायोरिटाइज किया है जो है सस्टेनेबल ब्रांड ग्रोथ ओवर प्रॉफिट्स, और ये उसका जो है स्ट्रेटेजिक बिजनेस एक्यूमेन जो है वो शो करता है। तो यानी अगर ये एक किया है तो और भी कर सकती है ना, तो ऐसा उन्होंने कहा नहीं नहीं अपने मियां के लिए तो नहीं बेचा गया। हुमायूं सैयद और माहिरा खान जो है आजकल अपनी मूवी लव गुरु को कर रहे हैं प्रोमोट, आपको पता ही है डिफरेंट जगहों पे नजर आते हैं। लेकिन अभी जो रिसेंटली एक जगह प्रमोशन के लिए गए तो माहिरा खान को इन्होंने बहुत ज्यादा शॉक कर दिया जब इन्होंने कहा, आपको पता ही है कि हुमायूं सैयद वैसे तो बड़े हैप्पीली मैरिड हैं उनकी वाइफ समीना से, और वो समीना इनकी जो है वाइफ इनके अपने हस्बैंड की बहुत एक्टिंग की तारीफ करते रहते हैं। लेकिन दोनों जगह पे बैठे हुए थे और इंटरव्यूअर ने उनको पूछा दोनों को ही पहले माहिरा से कि आपको क्या अच्छा लगता है कि अगर आपको कोई प्यार में गिफ्ट करे, तो माहिरा ने कहा मुझे तो सिंपल चीजें भी खुश कर देती हैं, जैसे अगर कोई मुझे बैंगल्स भी दे दे तो मैं खुश हो जाती हूं। तो जब हुमायूं सईद से उन्होंने पूछा तो वो कहते हैं मुझे अपनी बीवी से परमिशन चाहिए कि मैं कुछ भी कर सकूं, कहीं पर भी जा सकूं, क्योंकि आना तो मैंने उसी के पास वापस है। है जी। वो पता नहीं वो क्या था, वो प्रवीण शाकर का गया तो लौट के मेरे पास ही आया, बस यही बात अच्छी है मेरे हरजाई की। है जी। तो ये वो वाला शेर है ये हुमायूं सईद, है जी, ऐसा हुआ तो उसके ऊपर वो बहुत शौक होगी। पाकिस्तान के नूर जमान जो है जी आउटस्टैंडिंग स्किल है जनाब, और जो क्या टैलेंट है, उसने क्वालिफाई किया है फॉर द मेन ड्रॉ ऑफ ब्रिटिश ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप के लिए अपनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए। नाउ ही हैज क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स। He already is reigning world under 23 squash champion. इन्होंने डिफीट किया इजिप्ट के करीम एल तोर्की को मेन इवेंट के अंदर। इंग्लैंड में 10th सीडेड जमान ने डिफीट किया 3rd सीडेड एल तोर्की को इन 4 गेम्स और क्वालिफाई किया है अब इन्होंने। इससे पहले जो थे दूसरे क्वालिफाइंग जो राउंड थे उसके अंदर जमान ने इंग्लैंड के विल सॉल्टर को बहुत ही टेंस 42 मिनट्स का जो मैच था उसमें आउट किया, और एड्रियन वॉलर को भी 59 मिनट का जो थ्रिलर था उसमें आउट किया। बाबर आजम के जो वालिद हैं आजम सिद्दीकी साहब, आज वो बहुत गुस्से में नजर आए क्योंकि कामरान अकमल जो है अपनी गेम पे तो कभी इसने कंसंट्रेट किया नहीं, कैच छोड़ता रहता था, पाकिस्तान को हराने में पूरा जो है ना साथ देता था अपोजिशन का, लेकिन इसने बाबर आजम के ऊपर बहुत एतराज किया। तो अब बाबर के जो अब्बा हैं वो बड़े गुस्से में आ गए हैं। तो इसने कहा जी कामरान अकमल ने कि बाबर और रिजवान को सिर्फ लिमिटेड गेम्स खिलाना चाहिए, जैसे कि टेस्ट आफ्टर 6 मंथ्स, और इनको जो ड्रॉप किया गया है अभी पाकिस्तान T20 स्क्वाड से तो बहुत अच्छा किया है, उसके 6 महीने और के बाद इनको बिल्कुल साइडलाइन कर देना चाहिए ODI से भी, और ये जो है बिल्कुल T20 ना खेलें, बस ये टेस्ट क्रिकेट अच्छी है इनके लिए वो ये खेलें, और जो टेस्ट खेल सकता है वो फिर ODI और T20 को भी जो है वो फिर खेल सकता है। अच्छा, इसके ऊपर अब अब्बाजी तो भड़क गए। इंस्टाग्राम के ऊपर उन्होंने एक तस्वीर डाला जिसके अंदर ये भी थे और बाबर भी था, तो उसमें वो भी नजर आ रहे हैं, बाबर है, कामरान है, वो कहते हैं कि ये बच्चा, और अपने बेटे बाबर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये कभी तुम्हारे अंडर कैप्टेंसी नहीं खेला, अलबत्ता तुम इसके अंडर कैप्टेंसी खेले और अंडे पे आउट हुए थे और मेरे बेटे ने उसमें 100 रन बनाए थे। और सक्सेसफुल लोग जो होते हैं उनके पीछे बात करने से अच्छा नहीं है, क्योंकि और वो वही लोग बात करते हैं सक्सेसफुल लोगों के पीछे जो खुद फेल्ड होते हैं। उन्होंने फिर एक टर्किश जो है प्रोवर्ब यूज किया, उन्होंने कहा जब कोई आपको अपना भाई बोलता है तो उससे पूछ लो कि तुम कौन से वाले भाई हो, हाबील हो या काबिल हो। तो पैजन आज भड़के। अच्छा जनाब, आज था पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में दूसरा T20, पाकिस्तान ने बनाए 201 for 6 in सेकेंड T20 और जीत गए। ये जो 3 मैच का सीरीज था, दूसरा उसका मैच भी जो हो रहा था लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में, पाकिस्तान ने टॉस विन करके बैटिंग करने को चूज किया था और बांग्लादेश को उन्होंने आउट किया फॉर 144 रन्स। पाकिस्तान एज अ रिजल्ट 1/57 रन्स। पाकिस्तान के कैप्टन सलमान अली आगा ने डिसाइड किया था बैटिंग का, जो कि बहुत ही फायदामंद रहा। अबरार अहमद जो है उसने 3 विकेट्स लिए 19 रन्स देके इन 4 ओवर्स, अमेजिंग बोलिंग फिगर्स। साइम अयूब आज बेचारा फिर से 4 पे आउट हो गया जिस वक्त जो है वो 12 रन से बोर्ड के ऊपर सेकंड ओवर के अंदर। मोहम्मद हैरिस ने फिर ज्वाइन किया साहिबजादा फरहान को मिडिल में और 103 रन जो हैं वो जोड़े। फरहान ने बनाया 41 बॉल 74, यानी कि 74 बनाए 41 बॉल्स में, और हैरिस ने 25 बॉल्स पे बनाए 41। आगा और हसन नवाज ने फिर 45 रन का पार्टनरशिप डाला और हसन जो थे उसने बनाए अनबीटन जो है 51 ऑफ 26 बॉल्स। पाकिस्तान के अरशद नदीम और मोहम्मद यासिर जो है उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है फॉर द फाइनल्स ऑफ 26 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स। ओवर 2000 एथलीट्स फ्रॉम 43 कंट्रीज यहां पे कम्पीट कर रहे हैं साउथ कोरिया के अंदर। अरशद ने थ्रो किया 86.34 मीटर्स पे, यासिर ने थ्रो किया 76.07 मीटर्स पे, और अरशद जो है वो लीड कर रहे हैं 21 मेंबर फील्ड में, फॉलोड बाय श्रीलंकाज रमेश थरंगा पाथी राजे जिसने के फेंका जेवलिन 83.71 मीटर्स पे, और जापान का यूता जिसने फेंका 81.36 मीटर्स पे। पाकिस्तानी टीम ने आज विन किया है जी सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप अगेंस्ट कजाकिस्तान 3-0 से, और अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन जो चेयरमैन है उन्होंने कहा कि सीनियर और जूनियर टीम्स के और भी बहुत सारे जो है वो मैचेस आ रहे हैं। तकरीबन 7 इंटरनेशनल इवेंट्स के अंदर पाकिस्तान जो है वो वॉलीबॉल चैंपियनशिप्स खेलेगा। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज इज अबाउट पाकिस्तान विनिंग 3rd गोल्ड मेडल एट एशियन मास्टर्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप इन दोहा। काशिफ रेहान ने जीता 102 केजी का वेट कैटेगरी, इसने लिफ्ट किया 170 केजी। पाकिस्तान के पास अब 3 गोल्ड है 1 ब्रॉन्ज है। ये कॉम्पिटिशन कतर में चल रहे हैं और ये कल तक कंटिन्यू रखेंगे, यानी कि मई 31 तक। पाकिस्तान की फीमेल एथलीट्स जो हैं नीलम रियाज, सबील सोहेल और नादिया मकसूद, उन्होंने अभी तक किसी इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया है, वो भी आने वाले दिनों में करेंगी, और जैसे जैसे वो कोई जीतेंगी अगर कोई मेडल्स तो हम उनके भी आपको डिटेल्स देंगे। तो ये है हमारी आज,
ये थी हमारी अब तक की गर्मा गर्म खबरें।
ठंडी बढ़ गई है, पानी
अब तो ठंडी हो गई। हाँ। अब तो बिल्कुल
इस पे पानी डाल दिया।
नहीं नहीं, मैंने आपने ही डाल दी, सुना दी, जब आपने सुना दी तो ये ठंडी हो गई। और आप ऐसा करें शायद जी, मैं आपको दो दिन की जैसे आपकी छुट्टी है ना, तो संडे मैं आपके लिए देखें एक आसानी पैदा कर रहा हूँ।
हाँ।
मैंने डक फोर्ट्स स्पेशली कहकर आपके लिए किया।
अच्छा अच्छा, अच्छा।
आप जाएंगी ईस्ट एंड पे।
ओके।
और वहाँ 407 पे चढ़ जाएंगी।
अच्छा ठीक है,
ठीक है।